समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
दिल्ली जैसा शहर जहां गर्मी पड़ती है तो पसीने छुड़ा देती है और सर्दी पड़ती है तो कंपकंपा देती है, यहां तक कि बरसात भी डुबो देने की हद तक पड़ती है। वहां आज कल का जो मौसम है तो इन सभी मौसमों की मार को भुलाकर हटाकर एक ताजगी, एक सुकून और राहत का एहसास कराता है दिल्ली का आजकल का मौसम। अब देखिए ना, एक तरफ अब भी कई जगहों पर एसी चल रहे हैं मगर दूसरी तरफ सिर्फ पंखे की हवा में भी आसानी से गुजारा हो रहा है। गीजर आम तौर पर अभी तक चालू नहीं हुए हैं लेकिन अगर सुबह सुबह 4-5 बजे नहाना हो तो गर्म पानी की जरूरत पड़नी शुरू हो गई है। यह है एक मिला जुला सा एहसास साल के सभी मौसमों की खुशगवारी का खूबसूरत संगम, ढलते अक्टूबर का ये पुरकशिश मौसम। आइए इससे पहले कि ये गुलाबी मौसम हमारा साथ छोड़कर, हमारा हाथ पकड़कर हमें सर्दियों के सफर पर ले चले, इसका भरपूर लुत्फ उठा लेते हैं क्योंकि कुछ चंद ही रोज का मेहमान है आजकल का ये मौसम। मौसमों की इस रोलर कोस्टर राइड पर सवार होकर आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। आज सवेरे इस खुशगवार मौसम का लुत्फ लेते हुए आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर और मेरे साथ भी जो मेरी साथी हैं वो भी इस मौसम का पूरा पूरा मजा उठा रही हैं। उनका नाम है रेनु कटारिया। कैसी हैं रेनु, आप मौसम का मजा ले रही हैं?
बिल्कुल, आपने पहले ही बता दिया है और मैं भी आपके साथ साथ और सबके साथ enjoying the weather and waiting for the winters to step in. जो हमारे पास नहीं होता है उसकी हम ज्यादा तमन्ना करते हैं, तो क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं उसका हमें इंतजार था और हम बहुत खुशी से सर्दियों का स्वागत करने वाले
हैं। लेकिन मेन बात फिर वही है, गर्मियां जा रही हैं और सर्दियां आ रही हैं लेकिन इन दोनों के बीच में जो आजकल का जो मौसम है ये सबसे ज्यादा खूबसूरत मौसम होता है। न गर्मी की चिंता, न सर्दी की परवाह, आराम से मजे लो जिंदगी के।
If only it could have stayed for longer.
तभी तो इसी ज्यादा इम्पोर्टेंट है 10-15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन।
बिल्कुल
जी।
सो लाइक यू हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड आवर लिसनर्स, आज सवेरे वी आर गोइंग टू हैव वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 14th of October. तो नेम, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
जी बिल्कुल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ करते हुए राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिला है। एक रिपोर्ट।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को राजभवन श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन का दावा पेश किया। इस सरकार में ये मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला का दूसरा कार्यकाल होगा। उल्लेखनीय है कि 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने और पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कोल।
BJP has appointed Union Home Minister Amit Shah and Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav as central observers for the Haryana BJP Legislature Party meeting to elect its leader. The party has also appointed Union Minister Prahlad Joshi and party's National General Secretary Tarun Chugh as central observers for the Jammu and Kashmir BJP Legislature Party meeting to elect its leader.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। उनका उद्देश्य भारत और अल्जीरिया के संबंधों को मजबूत करना है। राष्ट्रपति अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की सप्ताह भर की यात्रा के पहले चरण में कल शाम राजधानी अल्जीयर्स पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में बनाए गए मकाम इचाहित स्मारक पर आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिदी अब्देल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय में भाषण भी देंगी और जॉर्डन DSI के हम्मा गार्डन में इंडिया कॉर्नर का उद्घाटन करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति 16 अक्टूबर को मोरिटानिया जाएंगी, वो 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी में रहेंगी। इन देशों की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। उनका व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और प्रवासी भारतीय समुदाय से भी मिलने कार्यक्रम है। राष्ट्रपति की यात्रा का उद्देश्य अफ्रीका के इन देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार और प्रगाढ़ करना है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हु इज लीडिंग अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU, अराइव्ड इन जिनेवा लास्ट नाइट। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट मिस्टर बिरला सेड दैट ड्यूरिंग हिज विजिट ही विल एड्रेस द असेंबली ऑन द थीम Harnessing science, technology and innovation for a more peaceful and sustainable future. The assembly will continue till the 17th of this month. Mr. Birla will participate in the meetings of the IPU's governing council and will meet the Indian diaspora in Geneva today. Besides, he will also meet his counterparts from other parliaments on the sidelines of the assembly. The delegation comprises Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh Singh, Secretary General of both the houses and various other members of parliament.
भारत की तानिया हेमंत ने बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के बेंडिगो में ताइपे की तुंग सियो टोंग को पराजित किया। तानिया का ये कुल मिलाकर तीसरा और वर्ष का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। उन्होंने 2022 में इंडिया इंटरनेशनल और 2023 में ईरान फज्र इंटरनेशनल में खिताब जीते।
Popular film producer, director and screenwriter Rajkumar Hirani was given the National Kishore Kumar Award in Khandwa, Madhya Pradesh yesterday on the occasion of the 37th death anniversary of renowned singer and actor Kishore Kumar. Khandwa is the birthplace of Kishore Kumar. MP government's cabinet minister Kumar Vijay Shah gave away this national award. The award is given every year to the eminent artist by Directorate of Culture Madhya Pradesh government from 1997. Many famous Bollywood actors, writers, producer directors have received this award till date. Before the award ceremony, Mr. Hirani reached the Samadhi of Kishore Kumar and paid tribute to him. The 4th Hockey India Senior Women Interdepartment National Championship will begin today at Major Dhyan Chand Stadium in New Delhi. The tournament will feature 12 teams divided into 4 pools and it will run till 21st of this month. During the league stage, each team will play against all other teams in their pool.
और आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद आपके हवाले करते हैं रेनू
जी,
और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता मेरा हुआ
जी। बिल्कुल, फर्स्ट आई विल बिगिन विद चेन्नई
जी।
द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द स्टेट विल हैव अ हेल्प डेस्क टू गाइड पेशेंट्स, एनहांस एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव पेशेंट सैटिस्फैक्शन। द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर TS सेल्वा विनायगम सेड दैट द स्टाफ एट दीज डेस्क विल प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्सेज, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प पेशेंट्स रिजॉल्व problems. Doctors and staff at PHCs have been directed to enhance operational efficiency, offer a better environment for patients and disguise patient records. Dr. Selva Vinayagam has asked district health officials to set up a May I Help You counter at all health centers. PHC will also have digital display screens for queue management, health awareness and other announcements. The aim is to ensure patients are comfortable. All documents including the OP sheets and access patient records and computers without compromising the patient's safety. And there's another news from Chennai, Naeem. The Met Department has predicted rains from today till the 17th of this month. Heavy to very heavy rainfall has been issued to the northern coastal districts of the state on the 15th and the 16th. Fishermen have been strictly warned not to venture into the seas for the next 5 days due to the prevalence of a low pressure, which is likely to be formed in the Bay of Bengal today evening. With the advent of the northeast monsoon this week, the state is to receive widespread rains this week. The state government has geared up for this monsoon season with the announcement of a helpline 1913, which will function round the clock. The Deputy Chief Minister Udayanidhi said that Tamil Nadu Alert app will disseminate weather alerts for the people to ensure safety. 13,000 volunteers are ready to take up the assistance for relief and restoration work to help the people.
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दीपावली से पहले राजधानी में 1,323 किलोग्राम अवैध पटाखों की बड़ी खेप जब्त की है। प्रतिबंधित पटाखों की आपूर्ति करने वाले एक ड्राइवर सहित 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाहरी दिल्ली के बापरोला और किराड़ी गांव के 2 गोदामों पर इस सिलसिले में छापेमारी की। दिल्ली NCR के गुरुग्राम में सरस मेले की शुरुआत हो गई है। 17 दिवसीय सरस मेले में करीब 30 राज्यों की 900 से ज्यादा ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी भाग ले रही हैं। ये कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों के क्षमता निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। एक और खबर है दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने बताया कि राजधानी में पिछले 2 साल से लगातार जनवरी से अक्टूबर तक प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। एक प्रेस वार्ता में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सूचित किया कि पिछले 2 साल से इस अवधि में 200 से अधिक प्रदूषण स्तर के अच्छे दिन दर्ज किए गए हैं। श्री राय ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस बार दशहरा के अगले दिन भी दिल्ली की हवा साफ रही। उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस दिन दिल्ली का प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में रहता है, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने के बावजूद हवा स्वच्छ रही। इसके अलावा श्री राय ने जोर देते हुए कहा कि कल से अगर राजधानी में कोई धूल प्रदूषण फैलाता मिलता है तो उसके खिलाफ एंटी डस्ट कैंपेन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Moving on to Bengaluru, the United States Surgeon General Dr. Vivek Murthy, who is on a visit to India, last week propagated a legislation or policy to make social media safer for the younger generation. Addressing media persons in Bengaluru last week, he cited the example of safety standards in cars. He explained that social media and online relationships have led to isolation and loneliness. In several instances, it has taken a toll on self-esteem. The influence of the digital world has changed the way we relate to each other. It has hindered interpersonal communication and the urge to build good relationships. The parents have no experience of dealing with their children influenced by social media. He expressed interest in US-India collaboration in the area of mental health care. He pointed at the Telemanas program of NIMHANS in India and hoped that both the countries could extend research cooperation in this area to make mental health care accessible, acceptable and affordable to all.
मुंबई चलते हैं। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कई राजनीतिक नेताओं और बॉलीवुड हस्तियों ने नेता बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास का दौरा किया। वरिष्ठ एनसीपी नेता की शनिवार को मुंबई में 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविवार को मुंबई के एक हॉलीडे कोर्ट ने मामले में 2 आरोपियों को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा है कि उन्होंने मामले के सिलसिले में तीसरे आरोपी की पहचान कर ली है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक अन्य आरोपी प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों हरियाणा के गुरमेल सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने एक मुंबई गैलरी का समागम किया है जो मुंबई की कहानी प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय से जारी एक बयान के अनुसार मुंबई गैलरी को एक ऐसे मंच के रूप में योजनाबद्ध किया गया है जो चक्रीय दीर्घकालिक प्रदर्शनियों के माध्यम से विविध विचारों का प्रदर्शन करेगी। ये शहर और उसके दैनिक जीवन के अनूठे पहलुओं को सामने ला सकती है। इसमें कहा गया है कि मुंबई गैलरी में पहली प्रदर्शनी उन लाखों लोगों को समर्पित है जिन्होंने इसे एक आकार दिया है और जिनके लिए ये शहर उनकी नियति और भविष्य है। और एक और आखिरी खबर मेरे पास जो है मुंबई से वो ये है रेनू
जी,
कि पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर महिला जयवर्धने को रविवार को मुंबई इंडियंस का फिर से मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जयवर्धने ने इससे पहले 2017 से 2022 तक मुख्य कोच की भूमिका निभाई थी। जयवर्धने के वैश्विक भूमिका में पदोन्नति के बाद मुंबई इंडियंस ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर मार्क बाउचर को मुख्य कोच नियुक्त किया था।
एंड द लास्ट न्यूज दैट आई हैव इज फ्रॉम हैदराबाद मेट्रो। टेम्परेचर्स आर लाइकली टू डिप शार्पली अक्रॉस तेलंगाना स्टेट इन द अपकमिंग विंटर सीजन। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज इन इट्स लेटेस्ट फोरकास्ट रिवील्ड दैट द विंटर दिस ईयर इज लाइकली टू बी सिवियर फॉर द स्टेट ड्यू टू वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग पॉसिबल ला नीना कंडीशन। The recurring La Nina phenomena characterized by cooler than normal ocean temperatures in the central and eastern Pacific often results in colder winters in parts of India, including Telangana. This year's forecast suggests another challenging winter ahead. The IMD warns that the impact of La Nina could extend beyond low temperatures with higher chances of fog during the mornings, potentially disrupting visibility.
और पश्चिम बंगाल से कोलकाता से मेरे पास एक खबर यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य सचिवालय नबान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक में अन्य डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। कल उन्हें ईमेल भेजा गया था। आरजी कर मुद्दे पर जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की हालत बिगड़ती जा रही है। आम लोग भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और प्रमुख महानगरों की खबरों के बाद प्रमुख महानगरों के मौसम पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में शाम या रात के समय बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
मूविंग ऑन टू चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम temperature will be around 20 degrees Celsius and the maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और अब चलते हैं उस जगह जो इतिहास बन चुकी है आज की तारीख। वहां देखते हैं कि 14 अक्टूबर को विश्व भर में आज के दिन कहां कहां क्या क्या खास हुआ
जी।
तो 14 अक्टूबर 1882 की बात करना, शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास के बाद स्थापित किया गया भारत का चौथा विश्वविद्यालय था। 1933 में आज ही के दिन जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समूह से बाहर आने की घोषणा की। और 14 अक्टूबर 1943 को जापान ने फिलीपींस की स्वतंत्रता की घोषणा की।
ऑन दिस डे दैट इज 14th of October इन 1955 कोलंबो प्लान कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट न्यू दिल्ली प्लीज फॉर टेक्नोलॉजिकल एड टू एशिया। इन 1956 डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर एंड अबाउट 2 लाख शेड्यूल्ड कास्ट मेन एंड वुमेन एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म इन नागपुर ऑन दिस डे।
1981 में हुस्न मुबारक मिस्र के चौथे राष्ट्रपति बने।
इन 1985 असम गण परिषद वॉज एस्टैब्लिश्ड। इन 1997 ऑन दिस डे क्वीन एलिजाबेथ एंड प्रिंस फिलिप विजिटेड अमृतसर एंड स्पेंड टाइम एट द जलियांवाला बाग एंड गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। एंड ऑन 14th of October इन 1998 प्रोफेसर अमर्त्य सेन इंडियन नोबेल लॉरेट्स द इकोनॉमिस्ट फिलोसोफर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स।
और 2010 में राजधानी दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ। तो ये तो सारी बातें हुई 14 अक्टूबर के इतिहास की कि आज के दिन कहां कहां क्या क्या खास हुआ पूरी दुनिया में। लेकिन आज ही के दिन कुछ ऐसी शख्सियतें भी इस दुनिया में आईं या हमें छोड़कर चली गईं जिनका ताल्लुक आज ही की तारीख से यानी 14 अक्टूबर से ही है। तो उन्हीं को याद कर लेते हैं।
बिल्कुल करते हैं जी।
सबसे पहले जिक्र करते हैं शोभा नायडू जी का जिनकी आज पुण्यतिथि है। वो भारत की प्रमुख कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक थीं। वो प्रसिद्ध स्वामी वंपाति चिन्ना सत्यम की एक उत्कृष्ट शिष्या थीं। एक गुरु के रूप में शोभा नायडू ने भारत और विदेशों के कई छात्रों को प्रशिक्षित किया। अपनी नृत्य कला से उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी सराहना पाई। शोभा नायडू ने अमरीका के कई शहरों और ब्रिटेन समेत अन्य देशों में भी प्रस्तुतियां दी और उनके बहुत ढेर सारे पुरस्कारों में से जो खास अगर कुछ पुरस्कारों की बात करें तो 2001 में उन्हें पद्मश्री, 1982 में नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार, 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1996 में नृत्य का सरमोनी पुरस्कार से भी नवाजा गया था।
And today is the birthday of Sir Cliff Richard, OBE, who is a British singer and actor. He has total sales of over 21.5 million singles in the United Kingdom and as of 2012 was the third top-selling artist in UK singles chart history behind the Beatles and Elvis Presley. And name in a career spanning over 65 years. Dekhiye kitne saal unhone gaane gaaye hain.
Isiliye itne mashhoor मशहूर भी है कि इतना टैलेंट और फिर इतना लंबा टाइम उनको काम करने का
एग्जैक्टली. और जो गाना हम इनका सुनवाने वाले हैं वो तो आपने भी और हमारे सारे लिसनर्स ने जरूर सुना होगा, पर उससे पहले थोड़ा और यू नो आई वॉन्ट टू गिव इन अ लिटल मोर इनपुट ऑन सर क्लिफ रिचर्ड. सो इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 65 ईयर्स रिचर्ड हैज अमास सेवरल गोल्ड एंड प्लैटिनम डिस्क्स एंड अवार्ड्स इंक्लूडिंग 2 आइवर नोवेलो अवार्ड्स एंड 3 ब्रिट अवार्ड्स. मोर देन 130 ऑफ हिज singles, albums and EPs have reached the UK top 20 more than any other artist. Richard has had 67 UK top 10 singles, the second highest total for an artist, only behind Elvis Presley. He holds the record with Presley as the only act to make the UK singles charts in all of his first 6 decades. He has achieved 14 UK number 1 singles and is the only singer to have had a number 1 single in the UK in each of 5 consecutive decades. And he also had 4 UK Christmas number 1 singles, 2 of which were a solo artist, Mistletoe and Wine and Saviour's Day. But here we are going to listen to this most uplifting and happy songs for the happiest of times. Congratulations.
Sure.
Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know what happy as can be. I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart.
True legend, I must say.
Yes, of course.
और एक और लेजेंड हमारे इंडिया से भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं जिनकी आज जयंती है. उनका नाम था लाला हरदयाल, और लाला हरदयाल का नाम सुनते ही दिल्ली वालों को खास तौर पर लाला हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी याद आ जाती है.
बिल्कुल आती है. जी
जी. लाला हरदयाल जो थे वो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे. विदेशों में भटकते हुए अनेक कष्ट सहकर लाला हरदयाल ने देशभक्तों को भारत की आजादी के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया. लाला हरदयाल ने दिल्ली और लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त की. देशभक्ति की भावना उनके अंदर छात्र जीवन से ही भरी हुई थी. मास्टर अमीर चंद, भाई बालमुकंद जैसे लोगों के साथ उन्होंने दिल्ली में भी युवकों के एक दल का गठन किया था. लाहौर में उनके दल में लाला लाजपत राय जैसे युवक सम्मिलित थे. एमए की परीक्षा में सम्मानपूर्ण स्थान पाने की वजह से पंजाब सरकार से उन्हें छात्रवृत्ति मिली और वो अध्ययन के लिए फर्दर स्टडीज के लिए लंदन चले गए. वापस आकर वो पंजाब नामक अंग्रेजी पत्र के संपादक बन गए. उनका प्रभाव बढ़ता देखकर सरकारी हलकों में जब उनकी गिरफ्तारी की चर्चा होने लगी तो लाला लाजपत राय ने आग्रह करके उन्हें विदेश भेज दिया. 1910 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका पहुंचे. वहां उन्होंने भारत से गए मजदूरों को संगठित किया, गदर नामक पत्र निकाला और गदर पार्टी की भी उन्होंने स्थापना की. प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर लाला हरदयाल ने भारत में सशस्त्र क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए. लाला हरदयाल ने भारत का पक्ष प्रचार करने के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की और अन्य कई देशों की भी यात्रा की. जर्मनी में उन्हें कुछ समय तक नजरबंद कर लिया गया था. वहीं से वो स्वीडन चले गए जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 15 साल बिताए. 4 मार्च 1939 को कुर्सी पर बैठे बैठे विदेश में ही सदा के लिए ये महान क्रांतिकारी पंचतत्व में विलीन हो गया.
जी.
और जयंती एक और बहुत बड़ी हस्ती की है जिनका नाम है निखिल रंजन बैनर्जी. 20वीं सदी में भारत के प्रमुख सितार वादकों में इनकी गिनती की जाती है. निखिल बैनर्जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को पश्चिम बंगाल राज्य के एक ब्राह्मण घराने में हुआ था. निखिल रंजन बैनर्जी को सितार बजाना इनके पिता जितेंद्र नाथ बैनर्जी ने सिखाया था. सितार बजाने की उनमें बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा थी. निखिल रंजन बैनर्जी ने 9 साल की उम्र में अखिल भारतीय सितार प्रतियोगिता जीती और जल्द ही आकाशवाणी पर सितार बजाना शुरू कर दिया. शुरुआती प्रशिक्षण के लिए जितेंद्र नाथ के अनुरोध पर मुश्ताक अली खान ने निखिल बैनर्जी को अपना शिष्य बनाया. निखिल बैनर्जी उस्ताद अलाउद्दीन खान से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे लेकिन वो उन्हें किसी को भी और शिष्य नहीं बनाना चाहते थे. लेकिन आखिर में जब रेडियो पर निखिल बैनर्जी का सितार वादन उन्होंने सुना तो अलाउद्दीन खान साहब ने अपना निर्णय बदला और फिर उसके बाद ये रहा कि निखिल बैनर्जी जो रहे उस्ताद अलाउद्दीन खान के मुख्य रूप से शिष्य रहे, लेकिन साथ ही उन्होंने अली अकबर खान से भी शिक्षा प्राप्त की. निखिल रंजन बैनर्जी को 1987 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण, 1968 में पद्मश्री और 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। और जो बैकग्राउंड में आप ये सितार सुन रहे हैं, सितार का ये टुकड़ा जो सुन रहे हैं, ये निखिल रंजन बैनर्जी का ही बजाया हुआ है।
And today we are paying tributes to Sir Roger George Moore, KBE, who was an English actor. He was the third actor to portray fictional secret agent James Bond in the Yawn Productions or MGM Studios film series, playing the character in 7 feature films, Live and Let Die, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only, A View to a Kill, and many more. Moore was appointed a UNICEF Goodwill Ambassador in 1991 and was knighted by Queen Elizabeth II in 2003 for services to charity. In 2007, he received a star on the Hollywood Walk of Fame for his contributions to the film industry. He was made a Commander of the Order of Arts and Letters by the French government in 2008. Here, Naeem, hum apne listeners ko aur aapko bhi ek aisa tune aur ek theme sunana chahte hain jisko sunte hi sabko pata chal jata hai ki yes, we are going to watch a James Bond movie here.
Achha.
Ji.
और आज ही जयंती होती है बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की, जो एक मशहूर असमिया साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित उपन्यास या रुइंकम के लिए इन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार असमिया से सम्मानित किया गया था। 1979 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समाजवादी विचारों से प्रेरित बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य कहानीकार, कवि, निबंधकार और पत्रकार सभी थे। वो साहित्य अकादमी दिल्ली और असम साहित्य सभा के उप अध्यक्ष भी रहे। और एक और नाम है जिनकी आज जयंती है, बहुत बड़ा नाम है, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो कि परम वीर चक्र से सम्मानित भारतीय थे। उन्हें यह सम्मान 1971 में मरणोपरांत मिला। 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से छूटकर एक स्वतंत्र देश की तरह जन्मा भारत के इतिहास में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस युद्ध में पाकिस्तान ने मुंह की खाई, न सिर्फ वो हार गया बल्कि 2 राष्ट्रों में बट गया। इस युद्ध में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, जिनमें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल उन्हीं में से एक थे।
तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
And today we are paying tributes to Ardashir Irani, who was a writer, director, producer, actor, film distributor, film showman and cinematographer in the silent and sound eras of early Indian cinema. He is considered one of the greatest personalities in recent Indian cinema, and he was the director of India's first sound film, Alam Ara.
Exactly, Naeem. First talk of Indian cinema.
Bilkul, he was the producer of India's first color film, Kisan Kanya. He was renowned for making films in Hindi, Telugu, English, German, Indonesian, Persian, Urdu and Tamil, and he was a successful entrepreneur who owned film theatres, gramophone agency and a car agency, and he died today on 14th October in 1969 at the age of 82 in Mumbai, Maharashtra.
और आज जन्मदिन है उस्ताद शाहिद परवेज खान का, जिन्हें आमतौर पर शाहिद परवेज के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 1954 को उस्ताद शाहिद परवेज खान का इमदाद खानी घराने से एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक के रूप में जन्म हुआ। इटावा घराने की 7वीं पीढ़ी के प्रमुख वादक हैं उस्ताद शाहिद परवेज खान, और उनके मिले हुए सम्मानों और पुरस्कारों में खास तौर पर कला ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, सुशृंगार और कुमार गंधर्व सम्मान है। गीत संगीत का और जानकारी का मनोरंजन का ये सफर यूं ही जारी रहेगा हर रोज, जिसे आप सुन सकते हैं आकाशवाणी गोल्ड 100.1 MHz पर कार्यक्रम आज सवेरे में। लेकिन अभी वक्त हो रहा है रेणु कटारिया और नईम अख्तर को आज सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त करके इजाजत देने की।
नमस्कार।